आह मेरा श्वास उत्तप्त, ध्वनियों में उमड़ आई लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। प्रयोगवादी काव्य कलाकार समाज का गहनता से अध्ययन कर एक एक तत्वों पर वृहत ढंग से विचार करता है। वह बौद्धिक तुष्टि प्राप्त करना चाहता है, जैसा कि कवि श्री कुंवर नारायण जी लिखते हैं, केवल भौतिक शर्तों पर ही जीवन कोई सांत्वना नहीं, वह जीने मरने से बदतर, जिसमें कोई वैशिष्ट नहीं, कल्पना नहीं। बौद्धिकता के साथ तर्कशास्त्र को भी बड़ा ही महत्व दिया गया है। श्रीकांत वर्मा जी के तार्किक कविता पर एक उदाहरण निम्नलिखित है, शासक नहीं होंगे तो कानून नहीं होगा, कानून नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं होगा, अगर व्यक्ति नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, हम क्या करें, कानून तोड़ दें, धर्म को छोड़ दें, व्यवस्था को भंग करें। प्रयोगवादियों ने मानव जगत के लघु प्राणियों पर साहित्यिक दृष्टिपात कर प्राकृतिक यंत्र जगत की लघु वस्तुओं को भी अपने काव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस प्रकार की कविता में पहली बार चूड़ी का टुकड़ा, चाय की प्याली, सायरम रेडियम की घड़ी, बाथरूम आदि जैसे साधारण वस्तुओं पर बड़े ही मार्मिक दृष्टि एवं भावानुमुख होकर काव्य प्रस्तुत किया है। चूँकि प्रयोगवादी काव्य कला प्रगतिशील साहित्य के प्रतिक्रिया स्वरूप उद्धृत हुई है, फलतः प्रयोगवादी उसे सरस एवं सरल बनाने का काफ़ी प्रयत्न किए। इसी कारण इनको भाषा एवं शैली में कहीं कहीं भद्देपन आ गया है। जैसे सरग था उर नीचे पाताल था, अपच के मारे बहुत बुरा हाल था, दिल दिमाग भूस खद्दर का खाल था। साथ ही साथ प्रयोगवादी कवियों ने कवित्य सवैया के लयदारों व लोग गीतों के धुन के आधार पर कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी भाषा के छंदों, शानेट, गजल, रुबाई, बहर आदि का भी बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रयोगवादियों के भाव अभिव्यक्ति एवं मुख्य साधन प्रतीकवाद हैं। प्राचीन उपमानों की प्रतिक्रिया स्वरूप नवीन उपमान भी व्यवहृत हुए हैं, पर कुछ स्थानों पर नूतन उपमानों का सुंदर समायोजन हुआ है। जैसे प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया एक आधुनिक प्रतीक स्वरूप है। उपयुक्त विवेचनाओं से सिद्ध होता है कि प्रयोगवादी काव्य निसंदेह रूप से आधुनिक परिवेश में एक नई प्रेरणा शक्ति है। प्रयोग की ही मूल प्रेरणा से परिचालित एक नया आंदोलन तत्कालीन जगत से उठ खड़ा हुआ, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। उपयुक्त विवेचनाओं से सिद्ध होता है कि प्रयोगवादी काव्य निसंदेह रूप से आधुनिक परिवेश में एक नई प्रेरणा शक्ति है। प्रयोग की ही मूल प्रेरणा से परिचालित एक नया आंदोलन तत्कालीन जगत से उठ खड़ा हुआ, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। प्रयोगवादी कवियों में श्री अज्ञेय जी धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह आदि प्रमुख कविगण हैं। यद्यपि प्रयोगवादी काव्य की अनेक आलोचकों जैसे डॉक्टर नगेंद्र आचार्य नंद्र दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर विनय मोहन आदि के कटु आलोचना की, अपितु प्रयोगवादी काव्य का ऐतिहासिक महत्व है। प्रश्न, नई कविता की विशेषताएं बताते हुए उसके क्षेत्रों की चर्चा कीजिए, या नई कविता में यथार्थवाद, अनुभववाद, आस्था एवं अनास्थावाद, बौद्धिकता एवं वैचारिकी, सौंदर्य बोध एवं लोक संपत्ति, व्यंग्यवाद सो उद्देश्यवाद के कला पक्ष और भाषा शैली पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, नई कविता। हिंदी काव्य साहित्य में नई कविता का उद्भव एवं विकास काव्य कला जगत में अद्वितीय प्रभाव रखती है। छायावादी काव्य कला के पश्चात हिंदी काव्य कला में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए वह आधुनिक काव्य को एक नई दिशा प्रदान करती है। प्रगतिशील साहित्य, प्रयोगवादी काव्य, तत्पश्चात नई कविता का उत्थान विगत चार दशकों में अनेक प्रतीतमान प्रस्तुत हुए। नई कविता को परिभाषित करते हुए श्री सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा, नई कविता विश्व वर्चस्व से प्रेरणा ग्रहण करके आज के प्रत्येक पल बदलते हुए युग के पट को अपने मुक्त छंदों के संकेतों को तीव्र मंद गति लय में अभिव्यक्त कर युग मानव के लिए भाव भूमि प्रस्तुत कर रही है। स्वतंत्रता पश्चात के बाद भारत में जनतांत्रिक समाजवादी पद्धति से शासन प्रशासन विकसित हुआ। समूचा मुल्क पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान एवं पुनर्संस्कार में जुड़ा हुआ था। विकासवादी राष्ट्रों को काव्य कला में भी अनेक नव परिवर्तन हो रहे थे, जिससे हिंदी काव्य जगत को लेकर कलाकार अनभिज्ञ नहीं थे। प्रयोगवादी काव्य कला में नई कविता की आधारशिला बन चुकी थी। कतिपय आलोचकों एवं समालोचकों ने प्रयोगवादी काव्य को ही नई कविता मानने लगे, किंतु कालांतर में यह भ्रम दूर हो गया। नई कविता वस्तुतः प्रगतिशील काव्य एवं प्रयोगवादी काव्य का परिसंवाद रूप के पश्चात एक नई विचारधारा के साथ प्रस्तुत हुआ, जिसमें विज्ञानवाद, मनोविज्ञानवाद, मानवतावाद तीनों ही व्यंजना का पूर्ण अभिव्यंजना का रूप प्रस्तुत हुआ। नई कविता स्वातंत्र्योत्तर भारत के दूसरा सप्तक, जिसका प्रकाशन सन 1951 के बाद हुआ, इसके बाद लिखी गई। उन नवीन धारा की कविताओं के लिए प्रायः स्वीकृत व मान्य हो चुका है, जिसका स्वरूप एवं प्रकृति की कविताओं के लिए पारंपरिक कविता से पर्याप्त भिन्न व नया है। नई कविता के नामकरण का श्रेय आज्ञेय को दिया जाता है। उन्होंने अस्पष्ट रूप से नई कविता को प्रयोगवादी काव्यकला से अलग किया। तीन शतक के 21 प्रबुद्ध कवि वृंदों ने नई कविता की नींव डाली, जिसमें श्री दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, नागार्जुन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तीसरा सप्तक, जो कि सन 1959 में प्रकाशित हुआ था, इसके बाद नई कविता में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुकी थी। फलतः नई कविता में प्रगतिशील साहित्य, प्रयोगवादी काव्य एवं सैद्धांतिक रूप से अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, मनोविश्लेषणवाद, अति यथार्थवाद, मानवतावाद के समर्थक सम्मिलित हैं। नई कविता के रचनाकारों ने विश्व के बदलते हुए परिस्थितियों एवं विश्व में हो रहे घटनाओं पर विशेष दृष्टि रखे हुए हैं। वे स्वतंत्र भारत के बदलते हुए परिवेश में उद्भूत नई सामाजिक जटिलताएं, भिन्न राजनीतिक गतिविधियां, आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक विघटन, नैतिक मूल्यों में गिरावट, व्याप्त अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, उग्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय मिलाप एवं तनाव आदि मूल तत्वों का विशेष अध्ययन कर समझौतावादी स्वरूप प्रस्तुत किए। नई कविता का विषय वस्तु न तो रहस्यात्मक है और न ही छायावादी, किंतु नई कविता ने अपने पूर्व काव्यों को अच्छी तरह से आत्मसात किया। उनका विचार है कि काव्य के लिए विषय वस्तु खोजने के लिए हमें कहीं नहीं जाना है, वह तो आम जीवन में बिखरे हुए हैं। नई कविता आंग्ल, फ्रेंच, जर्मनी, रूसी, चीनी, स्पेनिश, ग्रीक, लैटिन एवं जापानी भाषाओं के काव्यकला एवं विषय वस्तु से प्रभावित है। वस्तुतः मुक्तिबोध जी के शब्दों में नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्म चेतन व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता उद्भव के मध्य नकेनवादी काव्यकला का विकास पूर्वी क्षेत्रों में हुआ। 1 दिसंबर 1956 को नकेन नाम से पटना में प्रपद्यवादियों कवियों, जिसमें नलिन बिचोलन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता आदि का काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। ये मूलतः प्रयोगवाद एवं नई कविता के मध्य एक ऐतिहासिक महत्व के काव्य कलाकार हैं, किंतु इसका प्रभाव दीर्घकालीन नहीं हो सका। नई कविता की विशेषताएं। नई कविता वास्तव में विज्ञानवाद, बुद्धिवाद, मनोविज्ञानवाद, क्रांतिकारी भावों से ओतप्रोत है। नई कविता वस्तुतः कविवृंदों का शोध है, जो समस्याओं को देखकर उसके समाधान एवं प्रभाव का वर्णन करते हैं। नई कविता की विशेषताएं हमने निम्नलिखित भावों के आधार पर कर सकते हैं। पहला, नई कविता में क्षणवाद तथा लघुमानववाद है। नई कविता मूल रूप से सहज मानव की प्रतिष्ठा, जिसे परवर्ती काल में सामान्य जन या आदमी कहा गया है, आधुनिक दृष्टिकोण से समन्वित मानवतावादी सिद्धांतों की प्रेरणा ग्रहण कर नए कवियों ने मनुष्य को विविध मानवेतर योनियों श्रेणियों एवं सिद्धांतों से मुक्त कर उसे सहज रूप में देखा। फलतः उसकी अच्छाई बुराई सफलता असफलता उपलब्धियां, सीमाएं, नैतिकता अनैतिकता एवं महत्ता न्यूनता आदि सबको काव्य जगत में मान्यता प्रदान की गई है। नई कविता में वैज्ञानिक सोच का पूर्ण परिचय है। जैसा कि धूमिल की एक कविता में प्रस्तुत है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन? मेरे देश की संसद मौन है। वर्तमान समय में मानवीय संस्कार के बारे में कवि ने बड़े ही सहजता तार्किकता एवं वैज्ञानिक रूप से प्रश्न रखा है कि वह तीसरा आदमी कौन है जो वास्तव में मानवता का शोषक है। नई कविता जीवन के प्रति गहन आस्था रखती है। वह जीवन को उसके सारे गुण दोष और पाप पुण्य के साथ स्वीकार करती है। वह इस मनोविज्ञानिता को स्वीकार करती है कि मनुष्य क्षणों में जीवित रहता है। मानव जीवन का हर क्षण मूल्यवान है और वह न जाने किस क्षण मनुष्य का ऐतिहासिक क्षण सिद्ध हो जाए। लघु मानव का अर्थ यह है कि वह सामान्य मनुष्य का चित्र खींचती है जो सभी संवेदनाओं का भूख प्यास से पूर्ण सामान्य मनुष्य है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने छड़वाद एवं लघुवाद मानव का चित्रण पिछड़ा आदमी नामक कविता में किया है। जब सब बोलते हैं वह चुप रहता था, जब सब चलते थे वह पीछे हो जाता था, जब सब खाने पर टूटते थे वह अलग बैठा टूंगता रहता था, जब सब निढाल हो सोते थे वह शून्य में टकटकी लगाए रहता था, लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया। नई कविता में मानव जीवन के क्षणवाद को बड़े ही मार्मिकता के साथ शोध किया गया। आम आदमी जीवन के हर क्षेत्र में नींव की ईंट तो बनता है, किंतु उसे कहीं से भी यशोगान प्राप्त नहीं होता। आदमी दिन रात एकाग्र होकर कठिन परिश्रम करने के पश्चात भी शांतिपूर्वक जीवन यापन की गारंटी नहीं पाता, क्योंकि आज की समाज उसके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। आम आदमी मात्र शोषण का वस्तु बन गया है। आम आदमी मजदूर किसान ठेलावान गाड़ीवान रिक्शावान श्रमिक आदि जैसे व्यक्ति हर क्षण तिरस्कार के पात्र बन जाते हैं। फलतः नई कविता के रचनाकारों ने बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमारों जैसे उदात्त चरित्र नायकों के स्थान पर आम दिन दुखी मानव चरित्र का गहनता से अध्ययन करते हैं और अपनी लेखनी चलाते हैं। दूसरा, नई कविता में यथार्थवाद छायावादोत्तर कवियों के कविताओं में यथार्थवाद का प्रमुख स्थान है। प्रायः सभी कवियों ने यथार्थवाद को बड़े ही मार्मिकता एवं हृदय स्पर्शी तथा मस्तिष्क को झंकृत कर देने वाली काव्य को प्रस्तुत किए हैं। जिस प्रकार वीरगाथा काल में वीर भाव का मूल रूप से वर्णन हुआ, भक्ति काल में भक्ति भाव को प्रधानता प्रदान की, रीति काल में श्रृंगार भाव को प्रधानता प्रदान की गई, उसी प्रकार आधुनिक काल में छायावादोत्तर कविता में यथार्थवाद को महत्ता प्रदान की गई। प्रगतिशील साहित्य एवं प्रयोगवादी काव्य में यथार्थवाद का फोटोग्राफिक स्वरूप को चित्रित किया गया, किंतु नई कविता के रचनाकारों ने यथार्थवाद को मात्र फोटोग्राफिक स्वरूप नहीं प्रदान किया, अपितु यथार्थवाद का प्रस्तुतिकरण तार्किक रूप में किया गया, जो अनुभववाद एवं बौद्धिकता पर आधारित था। बौद्धिकता यथार्थवाद का एक सजीव उदाहरण धूमि जी के काव्य मोचीराम में है। रापी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर पतियाए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। श्री धूमिल जी ने मोची के मानसिक अंतर्द्वंद को यथार्थवाद के धरातल पर बड़े ही सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। तीसरा, नई कविता में अनुभववाद। आधुनिक नई कविता में नए कवियों के अनुभूति पक्ष की नवीनता एवं भिन्नता इस अर्थ में है कि एक कवि छायावादी कवियों की तरह वायवी काल्पनिक एवं ओढ़े हुए सत्य को वाणी देने का प्रयास नहीं करते, और न ही प्रगतिवाद की आरंभिक दौर की कविताओं की तरह मार्क्सवादी चिंतनों से आक्रांत अनुभूति को स्वर देते हैं। ये अपने लघु परिवेश से प्राप्त लघु अनुभव क्षण चित्रण को ही श्रेयस्कर मानते हैं, बशर्ते कि ये क्षणानुभूतियाँ स्वयं द्वारा भोगी गई या झेली गई हों। एक कवि प्रामाणिक अनुभूति पर बल देते हैं, जैसे निम्न शब्दों में, अच्छा अपना ठाट फकीरी मंगनी के सुखसाज से। नरेश मेहता ने अनुभववाद का वर्णन करते हुए कहते हैं, आओ इस झील को अमर कर दें, छू कर नहीं अपने को दे दें हम इस जल को। चौथा, नई कविता में आस्था एवं अनास्थावाद। नई कविता में चित्रित मानव जीवन चरित्र आस्था एवं अनास्थावाद के मध्य भारी द्वंद्व है। नई कविता में वर्णित पीड़ा, बिखराव, अनास्था और मूल्यहीनता को पश्चिम का अनुभव मानते हैं, परंतु नई कविता में वर्णित यह अनास्था और मृत्युबोध अपने ही समाज की विषम स्थिति से उत्पन्न हुआ है। फिर इसमें मात्र अनास्था, निराशा और मरण की आकांक्षा नहीं है, सजीवता एवं आस्था के स्तर भी हैं। जीवन की गतिबद्धता का वर्णन करते हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं, अब कहीं कोई यात्रा नहीं है, न अर्थमन न अर्थहीन, गिरने और उठने के बीच में कोई अंतर नहीं है। मानव जीवन में निराशा एवं अनास्था इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति भूत, वर्तमान एवं भविष्य सभी को निरर्थक समझने लगता है। व्यक्ति मात्र सुखी रहता है वह न था न है और न होगा के मध्य इस तरह से आक्रांत होता रहता है कि वह हर पल दुखी एवं त्रस्त रहता है। वह अनुभूति करता है एक दृश्य इमारत मेरे ऊपर गिर पड़ी है, जो नहीं है उसके बोझ से मैं दब गया हूँ। एक अदृश्य नदी बुझकर फैल गई है, जो नहीं होगा उसकी धार में मैं बह गया हूँ। एक अदृश्य सड़क मेरे नीचे निकल गई है, जो नहीं था उसकी चपेट से मैं कुचल गया हूँ। इस अनास्थापूर्ण व्यवस्था में आस्था एवं सजीवता का भी चरित्र चित्रण बड़े ही प्रभावशाली ढंग से किया गया है। उदाहरण के लिए किताबों के पहाड़ों से घिरे लालटेन की रोशनी में अक्षरों पर झुके ओ सिर, जरा पूरब की खिड़की तो खोल देख, आकाश रंग गया है सूरज की लालिमा से। नई कविता में बौद्धिकता एवं वैचारिकता पाई जाती है। नई कविता मूलतः बौद्धिकता पर आधारित है। वैचारिकता के आधार पर नई कविता को समायोजित किया गया है। देश विदेश के अनेक वैज्ञानिक चिंतनों, दार्शनिक उपलब्धियों, नवीन आविष्कारों एवं काव्यांदोलनों के अध्ययन मनन एवं चिंतन के परिणाम स्वरूप नई कविता की भावभूमि अथवा काव्य संवेदना से पारंपरिक कविता की तुलना में वैचारिकता अथवा बौद्धिकता का अपेक्षाकृत अधिक समावेश हो गया है। इस प्रकार नई कविता अपनी वयस्कता व समझदारी का परिचय देती है, जिसमें कौशार्य भावुकता से विकसित अवस्था का माना जाता है। वैचारिक काव्य का एक प्रतिरूप इस प्रकार है। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। छठवां, नई कविता में सौंदर्य बोध एवं लोक संपत्ति। नई कविता की सौंदर्य दृष्टि भी पूर्व अपेक्षा व्यापक वैज्ञानिक एवं नवीन है, जिसे संश्लेषित सौंदर्य बोध कहा जा सकता है। वैज्ञानिक बोध से समन्वित इस नवीन सौंदर्य बोध में भावुकता का और रोमांच के स्थान पर वैज्ञानिक सोच, आधुनिक दृष्टि, यथार्थ ग्राही स्वर और भोगी हुई अनुभूति को प्रतिष्ठित किया गया है। लोक जीवन के बिंबों, शब्दों, उपमानों, प्रतीकों आदि का चयन भी किया है। अज्ञेय केदारनाथ अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध आदि की अनेक कविताएं इस दृष्टि से देखी जा सकती हैं। लोक जीवन के एक पक्ष का वर्णन करते हुए मुक्तिबोध के शब्दों में एक उदाहरण, गंदी बस्तियों के पास नाले पर बरगद है, उसी के श्याम तल में वे रंभाती कई गायें, कि पत्थर ईंट के चूल्हे सुलगते हैं, फुदकते हैं वहीं दो चार बिखरे बाल वाले बालकों के श्याम गंदे तन, व लोहे की बनी स्त्री पुरुष आकृतियां, दलिद्र के भयानक देवता के भव्य चेहरे वे चमकते हैं धूप में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के निम्नलिखित पंक्तियों में भी लोक जीवन की भावभीनी छपियां मुखरित हो उठी हैं। नए साल की शुभकामनाएं, खेतों की मेड़ों पर धूल भरे पांव को, कुहरे लिपटे उस छोटे से गांव को नए साल की शुभकामनाएं। सातवां, नई कविता एवं व्यंग्यवाद। नई कविता के कवियों के हाथ में साहित्यिक व्यंग्य के भयानक शस्त्र हैं, जिससे वे समाज के कुरीतियों पर भयंकर कुठारा घात करते हैं। एक महत्वपूर्ण व्यंग्य जो वर्तमान जीवन पर व्यवस्था पर की गई है, जाओ दो आने का तेल लाओ और टूटी कमर पर मालिश कराओ, क्योंकि तुम्हारे हिमायतियों ने पट्टी तुम्हारी कमर पर बांधने के बजाय अपने आँखों पर बांध ली है। अपने मन में भी देखो कितनी धांधली है। मनुष्य जीवन में इतना अधिक व्यस्त हो चुका है कि उसे न तो स्वयं का अवधान है और न जीवन का। कवि का एक व्यंग्य निम्नलिखित है, दो आंखें दरवाजा खोलती हैं, दो बच्चे टाटा कहते हैं, एक फटे हाल कलफ कालर टांगों में अकड़ भरता है और खटर पटर एक ढड्ढा साइकिल लगभग भागते हुए चेहरे के साथ दफ्तर जाने लगती है। सहसा चौरास्ते पर जली लाल बत्ती जब एक दर्द हौले से हृदय को हुल गया, ऐसी क्या हड़बड़ी की जिंदगी में पत्नी को चूमना देखो फिर भूल गया। आठवां, नई कविता एवं उद्देश्यवाद। नई कविता का विषय क्षेत्र प्रारंभ में शहरी परिवेश व मध्यम वर्ग की बाह्य समस्याओं व आंतरिक जटिलताओं तक ही सीमित था। कालांतर में ग्रामीण परिवेश व सामान्य जन की दुख दर्द को भी प्रचुर मात्रा में सीमित किया गया। इस दृष्टि में धूमिल की प्रसिद्ध काव्य संग्रह संसद से सड़क तक का प्रकाश एक युगांतकारी मोड़ सिद्ध होता है। नई कविता सामाजिक उद्देश्यता अथवा सामाजिक प्रतिबद्धता के आग्रह में भी रचनाकारों की एक ऐसी जमा दिखाई पड़ती है जिन्होंने कविता की वस्तु और कलात्मकता के बीच संतुलन कायम रखने की कोशिश की है। कविता का एक उदाहरण है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। नवा, नई कविता में कला पक्ष। नई कविता की कला परक विशेषताएं भी अस्पष्ट दिखाई देती हैं। बिंबात्मकता, नई प्रतीक योजना, नए विश्लेषणों व उपमानों के प्रयोग से उनका शिल्प एक नई छटा से युक्त हो गया है। नई कविता में भाव जितना ही ठोस और प्रभावशाली है, कला पक्ष उतना सुगठित नहीं है। नई कविता आम पाठक के बुद्धि के परे हो जाती है। नई कवियों में छंदबद्धता की घोर उपेक्षा हुई है। मूलतः वे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन साहित्य, रूसी काव्य साहित्य से प्रभावित लगते हैं। यहाँ गद्यात्मक सत्ता की प्रतिष्ठा की गई है। मुक्त छंदों की व्यापकता यहाँ भी खूब हुई है। नई कविता एवं मुक्त छंद एक दूसरे के पर्याप्त बन गए हैं। जैसे सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सिखा डसना विष कहाँ पाया। नई कविता में गद्यात्मक वाक्यों के समस्त व्याकरण चिन्हों जैसे कि विराम, कोष्टक, प्रश्नात्मक, विस्मय आदि बोधक का खुलकर प्रयोग किया गया। ज्ञेय, पढ़ो, वर्णिक, मात्रिक छंदों आदि की भी भारी उपेक्षा हुई है। भाषा में अलंकृत होते हुए भी रीतिकालीन काव्यों से काफी भिन्न है। करुण, शांत, विभत्स, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। हास्य रस व्यंग्यात्मकता का प्रतीक बना दिया गया। उपयुक्त विवेचनाओं से नई कविता का जो स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है वह हिंदी काव्य साहित्य में अद्वितीय स्थान है। दसवां, नई कविता की कला पक्ष एवं भाषा शैली। नई कविता हिंदी साहित्य जगत में अनेक साहित्यिक आंदोलनों एवं विकास का परिणाम है। नवीन युग के कवि कलात्मक दृष्टि से अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रूसी एवं अमेरिकन आदि साहित्य से प्रभावित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पश्चात हिंदी जगत में मुक्तक छंदों का खुलकर प्रयोग होने लगा। मुक्तक छंद नई कविता का पर्याय बन गई हैं। प्रायः सभी कवि गद्यात्मक स्वरूप में काव्य सृजन करने में लग गए। काव्य का भावात्मक पक्ष ज्यों ज्यों मजबूत होता गया कला पक्ष पर भी उतने ही कम ध्यान दिया जाने लगा। लय, ताल, गेय, वर्णिक, मात्रिक एवं सवैया जैसे काव्य का मानो लोप हो गया।